कमल की कहानी उस पार की आवाजें। लोहे के विशाल जेल गेट की छोटी सी खिड़की से भीतर घुसकर हवलदार जगता प्रसाद ने जैसे ही फोन उठाया, उस पार से आवाज आई, आपका कनेक्शन अस्थायी रूप से सेवा वंचित है, कृपया दूरभाष लेखा पदाधिकारी से संपर्क करें। लगता है फिर इसका बिल पेमेंट नहीं किया गया है, झल्लाते हुए उसने फोन रख दिया। फोनवा ठीक हो गया क्या हवलदार साहब? गेट पर पहरा दे रहे सिपाही की जिज्ञासा ने उनके जले पर नमक छिड़कने का काम किया। सब साले मादर हो गए हैं। जगता प्रसाद ने टेलीफोन विभाग को एक भद्दी सी गाली दी और इनकार में सिर हिला दिया। बिल बकाया हो गया है तो क्या हुआ? अरे इन फोन वालों को सरकारी फोन के साथ तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। सरकारी कामों से बजट आने में देर सवेर हो ही जाती है, ऐसा थोड़े ना है कि पैसा डूब जाएगा। वो लोग तो फोन में डेड कर दिए हैं। आप ठीक बोल रहे हैं, सिपाही ने खैनी ठोककर जगता प्रसाद की ओर बढ़ाते हुए कहा।
दूरभाष मद में अतिरिक्त आवंटन के लिए जेलर साहब मुख्यालय चिट्ठी भिजवा दिए हैं। खैनी होठों में दबा हवलदार बाहर वाले गेट की ओर बढ़ा तो अपनी कमर पर मोटे रस्से से लटक रहे बड़ी बड़ी चाबियों के गुच्छे को संभालता सिपाही छोटे गेट का ताला खोलने लगा। जेल में घुसने के लिए एक के बाद एक लोहे के दो विशाल गेट होते हैं। बाहर से नजर आने वाले गेट के ठीक पीछे वैसा ही दूसरा गेट भीतर की तरफ होता है। दोनों गेटों में एक एक छोटा गेट भी बना होता है ताकि हर वक्त बड़ा ही गेट खोलना जरूरी ना रहे। उनमें लगे विभिन्न तालों की सब चाबियां ड्यूटी पर तैनात एक ही सिपाही के पास रहती हैं ताकि एक समय में एक ही गेट खुले। खुला हुआ वो गेट बंद करने के बाद ही दूसरा गेट खोलने का नियम है। एक साथ दोनों गेट नहीं खोले जाते, एक साथ दोनों गेटों को खोलना सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक होता है। दोनों गेटों के बीच पर्याप्त दूरी रहती है, लगभग 20-25 लोगों के बैठ सकने लायक जगह। उस जगह के दाएं बाएं कारा अधीक्षक तथा जेल कार्यालय होते हैं। जेल कार्यालय में कारापाल, उपकारापाल, बड़ा बाबू आदि के बैठने की व्यवस्था होती है। भीतर वाले जेल गेट के ठीक पीछे ही वो इलाका होता है जिसे आम आदमी जेल के नाम से जानता है, शरीफों के लिए नर्क और अपराधियों के लिए तथा कथित ससुराल। जगता प्रसाद ना जाने क्या क्या बड़बड़ाता बाहर निकल गया था। बाहर गेट के बाईं तरफ विशाल बरगद की घनी छांव में थोड़ी जगह छेंक कर एस्बेस्टस की छत डाल दी गई है, वो जेल गुमटी कहलाती है। जगता प्रसाद जाकर वहीं बैठ गया। एक तरफ मुलाकातियों, बंदियों से मिलने आए लोगों की लाइन लगी थी। सभी मुलाकातियों को कागज की पुर्जी पर उस बंदी का नाम आदि दर्ज करवाना होता जिससे वे मिलने आए थे। उस पुर्जी के बगैर उनका बंदी से मिलना संभव नहीं, और वो पुर्जी हासिल करने के लिए 10 का नोट लेना जेल वालों ने दस्तूर बना रखा है। वो झोला में का है रे? सिपाही ने नोट व पुर्जी का आदान प्रदान करते हुए एक मुलाकाती से पूछा। आज मंगल है ना हुजूर, भाई जी के लिए हनुमान जी का प्रसाद लाया हूं, सहज भाव से उत्तर आया। पहले इधर लाओ, चेक कराओ, कहते हुए सिपाही ने झोला लपट लिया। तुमने इसमें कुछ मिला तो नहीं दिया? अगर बंदी मरमरा गया तो गई हमारी नौकरी। उसने झोले से मिठाई का डिब्बा निकाल हवलदार की ओर बढ़ाया। डिब्बा खुलते ही शुद्ध घी से बनी मिठाई की खुशबू गुमटी में फैल गई। हवलदार के बाद सिपाही ने घी के दो लड्डू अपने मुंह में दबाए और डिब्बा वापस लौटा दिया। मुलाकाती के लिए वो सब बिल्कुल भी अप्रत्याशित ना था। भाई जी के लिए वो जब भी मिठाई लाता पूरे हिसाब से लाता है। भाई जी तक आधा किलो मिठाई पहुंचे इसके लिए वो 1 किलो का डिब्बा लेता है। उस जेल के नियम अनुसार उसका लाया डिब्बा 3 जगहों पर चेक होता। पहला बाहरी गुमटी पर, दूसरा गेट पर चाबियां लटकाए सिपाही द्वारा, और तीसरा चेक भीतर वाली गुमटी पर। इस तरह भाई जी तक पहुंचते पहुंचते 1 किलो मिठाइयां घटकर आधा किलो हो जाती हैं। भीतर पहुंचाने के लिए यदि कोई ऐसी चीज होती जिसे खाकर चेक ना किया जा सके तब उसके लिए अतिरिक्त शुल्क लेने का प्रावधान था। वकालतनामा, बेलबॉन्ड, रिलीज ऑर्डर आदि सबके लिए अलग अलग शुल्क जो मौके की नजाकत व देने वाले की हैसियत के अनुसार तय किए जाते। खैर अभी तो वहां जगता प्रसाद गंभीर रूप से चिंताग्रस्त बैठा था। क्या बात है हवलदार साहब, कुछ परेशान लग रहे हैं? पर्चियां बनाते सिपाही ने उससे पूछा। जगता प्रसाद ने एक ठंडी सांस छोड़ी। हाँ, चिंता की ही बात है। बोकारो से हमारा एक अर्जेंट फोन आने वाला है और यहाँ जेल का फोन ही डेड है। यहाँ वाला फोन तो जब से आप गांव गए हैं तभी से डेड है। तभी तो हमको मालूम नहीं हुआ, वरना हरिहर बाबू को यहाँ का नंबर नहीं बोलते। अब वे खबर कैसे करेंगे? फोन करने पर उनको केवल फॉल्स रिंग ही सुनाई दे रहा होगा। फिर कुछ सोचते हुए बोला, लगता है कारा अधीक्षक के घर वाला फोन का बिल फिर ज्यादा आ गया होगा। उसी का बिल देने में आवंटन खत्म हो गया, जैसा कि पहले भी कई बार हो चुका है। अब घर वाला फोन तो ठीक रखना ही पड़ेगा ना, मेम साहब का गुस्सा कौन झेले? फोन पर उनका बोलना बतियाना बंद नहीं हो जाएगा? कितना तो वे टीवी कार्यक्रमों में ट्राई करती रहती हैं, इस उम्मीद में कि ना जाने कब उनका नंबर लग जाए और वे भी करोड़ों में खेलने लगे। अब तो कारा महानिरीक्षक से अतिरिक्त आवंटन प्राप्त होने तक जेल गेट का फोन डेड ही रहेगा। बोकारो वाला समाचार बहुत खास है का? सिपाही ने सांत्वना देते हुए पूछ लिया। हाँ खास है, बेटवा का शादी का बात है। लड़की वाला 3 लाख दे रहा है, लेकिन हम 5 का डिमांड रखे हैं। बोकारो वाले हरिहर बाबू को ही बात फाइनल करके खबर देने का जिम्मा है। समय पर खबर नहीं आने से काम गड़बड़ा जाएगा। भला गड़बड़ा का है जाएगा? बात बिगड़ने की बात सिपाही को समझ ना आई। वो ऐसे कि इधर एक और लड़की का बाप हमरा लड़का के लिए अप्रोच किया है और ई अपने से 5 लाख का ऑफर दिया है। ई वाला पशुपालन विभाग में नौकरी करता है और ऊ वाला बोकारो में है। तो दोनों पार्टी सरकारी नौकरी वाला, लेकिन स्टील प्लांट का नौकरी में सूखे वेतन से कितना कमाया होगा? जबकि पशुपालन विभाग वाला चाईबासा में पोस्टेड था, चारा घोटाले में कस कर कमाया होगा। गड़बड़ ये है कि वो शादी के लिए जल्दी में है। हमको डर है कहीं अपना लड़की का बात कहीं और सेट ना कर ले। लेकिन जब तक हरिहर बाबू का फोन ना आ जाए, हम इसको हाँ भी नहीं बोल सकते। उधर से ना हो तो हम तड़ से इधर हाँ कर दें। पशुपालन घोटाला वाला कुछ लक्ष्मी तो हमारा घर में भी आ जाए, मगर वो घोटाला वाला पैसा से कोई लफड़ा में ना फंस जाइए। हम सुना है घोटाला वालों का हालत कुछ ठीक नहीं है, सिपाही ने शंका प्रकट की। अरे नहीं नहीं, वैसा कोई बात नहीं है, जगता प्रसाद ने उसकी बात काटते हुए कहा। जिसकी लाठी उसकी भैंस समझे, उन लोगों के पास इतना काला धन है कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम ही बताओ, इतना दिन हो गया, उन लोगों का क्या बिगड़ा है? सब लोग मजे में हैं। हाँ, ये बात तो आपका बिल्कुल ठीक है। अभी सिपाही की बात अधूरी ही थी कि 4-5 कारों तथा जीप का काफिला आकर गेट पर रुका। जगता प्रसाद जल्दी जल्दी बाहर निकले, कहीं कोई इंस्पेक्शन टीम तो नहीं आ गई। पर्चियां बनाता सिपाही का हाथ भी रुक गया। वो जल्दी जल्दी पैसे एक तरफ रखने लगा, लेकिन भीतर ही उन्हें पता चला चिंतित होने का कोई कारण नहीं है। पुलिस जीप से सदर थाना के बड़ा बाबू और साथ ही कारों से एक वकील के साथ कुछ पदाधिकारी जैसे लोग उतरकर गेट की तरफ बढ़ गए। भीतर कारापाल उन्हें अपने साथ ले कारा अधीक्षक के कक्ष की ओर चल दिए। जाते भी को ना, जिला दूरभाष अभियंता अर्थात TDM जैसे विशेष बंदी जेल में रोज रोज तो नहीं आते। ये बात जगता प्रसाद भी अच्छी तरह जानता था। वैसे भी शहर के अखबारों में छप रही खबरों के कारण वो ऐसी ही किसी स्थिति का पूर्वानुमान लगा चुका था। शहर के लगभग हर अखबार ने पौश इलाके में बन रहे TDM के करोड़ों रुपये वाले उस विशाल बंगले की सचित्र रपट उनकी काली कमाई के प्रमाण स्वरूप छापी थी। और ये भी कि उसकी रिपोर्टिंग करने गए पत्रकार की TDM ने कसकर पिटाई करवाने के साथ ही उसका कैमरा आदि भी तोड़ डाला था। लेकिन पिटाई कुछ ज्यादा ही हो जाने के कारण पत्रकार उस समय भी अस्पताल के ICU वार्ड में भर्ती था। काले धन और पद के मद में चूर TDM ने सपने में भी ना सोचा था कि एक अदना से पत्रकार की पिटाई उसे वो दिन दिखाएगी। उस पिटाई का उद्देश्य तो था कि दूसरा पत्रकार फिर वैसा करने का दुस्साहस ना करे, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। स्थिति नियंत्रण से बाहर चली गई। शहर का समूचा मीडिया उस घटना के खिलाफ इस कदर गोलबंद हुआ कि ICU में पड़े पत्रकार, बढ़ते हुए जन दबाव और FIR में धारा 307 लगने के बाद जेल पहुंचने के सिवा उनके पास कोई और रास्ता ना बचा था। अब जमानत की प्रतीक्षा में कुछ दिन तो लगने ही है। सर, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, यहां आपके आराम का पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा। क्यों जेलर साहब? साथ आए वकील ने कारापाल से अपनी बात की पुष्टि करवाते पूछा। हाँ सर, किसी बात की चिंता ना करें, लेकिन जरा इस आशय में कारा अधीक्षक महोदय से बात कर लेते तो हमें भी सुविधा होती। कारापाल ने स्थिति स्पष्ट की। अभी अभी वे लंच के लिए घर गए हैं। अच्छा अच्छा उनसे भी बात कर लेते हैं। वकील ने फोन की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन डायल टोन नदारद देख उसकी प्रश्नवाचक दृष्टि जेलर की ओर घूम गई। वो नॉन पेमेंट के कारण डेड है। क्या फोन डेड है? टीडीएम ने अपने साथ आए पदाधिकारियों पर कड़ी नजर फेंकी। सर, मैंने चलने से पहले ही ठीक करने को कह दिया था। अभी उसका वाक्य समाप्त बिना हुआ कि फोन की घंटी बजने लगी। उसने चैन की सांस ली। वकील ने लपक कर चोंगा उठाया। हाँ हाँ ठीक है। उसने चोंगा वापस रखकर फोन कारपाल की ओर बढ़ाया। लीजिए, आपका फोन ठीक हो गया। अब जरा अधीक्षक महोदय से बात कर ली जाए। कारापाल ने फोन मिलाया। थोड़ी देर बातें करने के बाद चोंगा वकील साहब को थमाते हुए बोला, लीजिए आप भी बात कर लें। प्रणाम सर। जी सर। अच्छा सर। वकील तत्परता से बातें कर रहा था। आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करें, हमारी तरफ से कोई कमी ना होगी। अब टीडीएम साहब तो कुछ दिन आपके ही छत्र छाया में रहेंगे। जी बहुत अच्छा, थैंक यू सर। वकील प्रसन्नता से फोन रखकर पुलकते हुए बोला, मैंने कहा था ना सर, जेल में सभी लोग बहुत अच्छे हैं। जेल अधीक्षक ने भी पूर्ण सहयोग का वादा किया है। वे आपके रहने की व्यवस्था सेल में करने को कह रहे थे। परंतु सेल का नाम सुन टीडीएम साहब घबराए। सेल में तो बड़ी तकलीफ होती है। उनकी घबराहट देख वकील और कारापाल दोनों मुस्कुराए। सर, अब सेल वैसी नहीं होती जैसी अंग्रेजों के जमाने में खतरनाक बंदियों को रखने के लिए हुआ करती थी। अब तो सेल चंद खास बंदियों को ही मिलती है। वहां आपको हर तरह की सुविधा मिलेगी। फिर आपके लिए तो स्पेशल सेल की व्यवस्था की जानी है। क्यों जेलर साहब, ठीक है ना? कारापाल ने सहमति में गर्दन हिलाई। बिल्कुल, आपको हर सुविधा कायदे से मिलेगी। पहले हम आपका चेकअप जेल डॉक्टर से करवाएंगे, जो आपको हेल्थ ग्राउंड पर विशेष सुविधा देने की बात लिखेगा। उसके आधार पर हम आपके लिए खास इंतजाम करेंगे। आपको जैसी सुविधाएं चाहिए वैसी ही सेल आपके लिए तैयार करवाई जाएगी। वास्तविकता जान लेने पर टीडीएम आश्वस्त हुए। फोन अपनी तरफ खिसकाते हुए बोले, पहले जरा घर पर बात कर लूं, सब वहां चिंतित होंगे। उसके बाद दिल्ली भी बात करनी है। सर, घर तो आपकी बात हो जाएगी, लेकिन दिल्ली आप बात नहीं कर सकेंगे, कारापाल ने उन्हें टोकते हुए बताया। इसमें एसटीडी नहीं है। कोई बात नहीं जेलर साहब, आप लोग इतना सहयोग कर रहे हैं, मैं क्या इसे एसटीडी भी नहीं करवा सकता? कहते हुए वे साथ आए एसडीओ की ओर मुड़े। इस फोन पर एसटीडी आईएसडी आदि सारी सुविधाएं दे दीजिए। और हाँ, ध्यान रहे ये फोन डेड ना होने पाए, समझे? उनके निर्देशानुसार एसडीओ तुरंत एक्सचेंज की ओर कूच कर गए। वे बातें सुन कारापाल बड़ा हर्षित हुआ, खासकर आईएसडी की बात सुन। उसकी नजरों के आगे विदेशी चैनलों पर 00 से प्रारंभ होने वाले नंबर चमकने लगे, जहां तीखी मुस्कानों और चंचल चितवन वाली कामुक लड़कियां 24 घंटे दोस्ती तथा मजेदार बातें करने का आमंत्रण देती रहती हैं। इधर टीडीएम फोन पर झुके और उधर वकील कारापाल से सटकर जेल में दी जाने वाली सुविधाओं का मोलभाव करने लगा कि सेल में टेबल फैन रहेगा या कूलर, मिनरल वाटर रहेगा या जेल का पानी, टीवी, वीसीडी, हर सुविधा, हर एक का हिस्सा। उनकी बातें तेजी से निपटती जा रही थी। जेलर साहब, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, कोई कमी ना होने दी जाएगी। वकील ने कारापाल को आश्वस्त करते हुए एक आंख दबा दी। आपने तो दिल खुश कर दिया, कारापाल ने प्रसन्न मुद्रा में कहा। टीडीएम साहब को अगर कोई कठिनाई हो जाए तो मेरे जेलर होने पर धिक्कार है। तब तक उन सब के लिए कोल्ड ड्रिंक्स व नमकीन का जोरदार प्रबंध हो चुका था। मैं अभी एक घंटे में सारे प्रबंध कर लौटता हूँ, तब तक आप लोग नाश्ता कीजिए। कहते हुए कारापाल अपनी बड़ी सी जेब संभालता बाहर निकल गया। वकील साहब, आपने तो कमाल कर दिया। टीडीएम बड़े प्रसन्न थे। सर, असली कमाल तो आप ही का है, मैंने तो केवल सेटिंग की है। वकील के होठों पर पेशेवर मुस्कान थी। अंदर बजती फोन की घंटी के साथ रिस रिस कर टीडीएम की जो कहानी जेल गेट से बाहर आई, उसने सबसे ज्यादा सुकून जगता प्रसाद को प्रदान किया। भले ही अब तक उसका फोन ना आया हो, परंतु वो अब पूर्व की भांति बेचैन ना था। फोन चालू हो गया है। दिन बीतने लगे। जब 2-4 दिन बीतने के बाद भी बोकारो से फोन ना आया, तो एक दिन सिपाही ने उनकी चिंता बढ़ाते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बीच लगातार फाल्स रिंग मिलने से हरिहर बाबू थक कर चुपचाप बैठ गए हों? 2 दिन छुट्टी लेकर आप बोकारो हो काहे नहीं आते? कहीं ऐसा ना हो उधर तो बात नहीं बने, इधर पशुपालन वाला पार्टी भी हाथ से निकल जाए। देखा जाए तो सिपाही की बात गलत ना थी, परंतु 2 दिन छुट्टी लेने के पक्ष में जगता प्रसाद कदापि ना था। छुट्टी जाने से ऊपरी आमदनी 0 हो जाती है, और कथा सम्राट प्रेमचंद के शब्दों में, ऊपरी आमदनी तो बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। बार बार छुट्टी ले, बहते स्रोत से दूर जाना भी कहीं की बुद्धिमानी है भला। लेकिन ये बात वो सिपाही पर जाहिर नहीं करना चाहता था। अरे भाई, अभी पिछले पखवारे ही तो छुट्टी ली थी, इतनी जल्दी कारा अधीक्षक छुट्टी नहीं देंगे। फिर अब तो फोन भी ठीक हो गया है, हरिहर बाबू जरूर कन्फर्म करेंगे। जगता प्रसाद ने सिपाही और स्वयं दोनों को आश्वस्त करना चाहा। और फिर प्रारंभ हुआ था दूरभाष पर दूर दूर तक बातें करने का वो रोमांचक दौर, जिसका रोमांच कारापाल, उप कारापाल, बड़ा बाबू सभी उठा रहे थे। और तो और, अपनी कमर पर चाबियों का गुच्छा लटकाए सिपाही ने भी 00 वाले अंतर्राष्ट्रीय नंबर पर सेक्सी लड़कियों से दोस्ती करने का मजा उठा लिया था। अगर प्यासा रहा था तो केवल जगता प्रसाद, जिसका बोकारो वाला फोन अभी तक ना आया। वो कुड़ रहा था उसने हरिहर बाबू का फोन नंबर क्यों ना ले लिया। वो इस बात पर भी कुड़ रहा था कि इस बीच रिंग कर रहे हरिहर बाबू को पहले सुनाई दे रही फॉल्स रिंग की जगह अब केवल इंगेज टोन सुनाई दे रहा होगा। जेल वालों के साथ साथ टीडीएम के भी काम होते रहे थे, नहीं हुआ तो केवल जगता बाबू का काम। इस खुमारी में दिन बीतते पता ना चला, और जल्द ही वो दिन भी आ पहुंचा जब टीडीएम को जमानत मिल गई। उनके जेल से जाने के साथ ही फोन का सारा रोमांच जाता रहा, वो पुनः डेड हो चुका था। रिसीवर उठाने पर फिर से झल्ला देने वाला वही संगीतमय वाक्य सुनाई पड़ता, आपका कनेक्शन अस्थायी रूप से सेवा वंचित है, कृपया दूरभाष लेखा पदाधिकारी से संपर्क करें। और लोग तो पिछले दिनों का जिक्र चटखारे ले लेकर करते, परंतु हवलदार जगता प्रसाद के लिए निराशा और दुविधा का दौर पूर्ववत जारी था। अभी आप सुन रहे थे कमल की कहानी उस पार की आवाजें, जिसे गाथा में आपके लिए प्रस्तुत कर रहे थे सुमन वैद्य।